नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, Kubernetes अप एंड रनिंग, डाइव इन टू द फ्यूचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रेंडन बर्न्स, जो बेडा, केएलसी हाईटावर और लैचलन एवेंसन की तकनीकी मार्गदर्शिका है। इसका तीसरा संस्करण कंटेनरीकृत अनुप्रयोगों को चलाने के लिए Kubernetes की भूमिका को व्यावहारिक ढंग से समझाता है। पुस्तक का केंद्र केवल सर्वर या वर्चुअल मशीन प्रबंधन नहीं, बल्कि वितरित अनुप्रयोग की इच्छित स्थिति को घोषित करके उसे लगातार बनाए रखने का विचार है। लेखक बताते हैं कि पॉड डिप्लॉयमेंट, सर्विस और कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट मिलकर किसी एप्लीकेशन को विश्वसनीय, स्केलेबल और दोहराने योग्य रूप में कैसे चलाते हैं। सामग्री आरंभिक क्लस्टर और साधारण डिप्लॉयमेंट से शुरू होकर जॉब्स, डेमन सेट्स, कॉन्फिग मैप्स, सीक्रेट्स और कस्टम विस्तार जैसे विषयों तक जाती है। यह एक वास्तुकला केंद्रित परिचय है जिसमें कमांड और उदाहरणों का उद्देश्य पाठक को अपने अनुप्रयोग पर अवधारणाएं लागू करने योग्य बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एप्लीकेशन लाइफसाइकिल की समस्या मानना। पुस्तक का मूल दृष्टिकोण यह है कि Kubernetes का मूल्य केवल कंटेनरों को किसी मशीन पर शुरू करने में नहीं है। वास्तविक समस्या यह है कि कई घटकों वाले अनुप्रयोग को बदलती मशीनों, असफल प्रक्रियाओं और बढ़ते या घटते ट्रैफिक के बीच इच्छित अवस्था में कैसे रखा जाए। Kubernetes उपयोगकर्ता से यह घोषित करवाता है कि कितनी प्रतिकृतियां चाहिए, कौन सा कंटेनर इमेज चलना चाहिए और नेटवर्क से उस तक कैसे पहुंचना है। नियंत्रण तंत्र फिर वास्तविक अवस्था की तुलना इस घोषणा से करता रहता है और अंतर मिलने पर सुधार करने का प्रयास करता है। इस मॉडल में ऑपरेटर हर प्रक्रिया को हाथ से पुनरारंभ नहीं करता, बल्कि प्रणाली को अपेक्षित परिणाम देता है। लेखक इस विचार को वितरित एप्लीकेशन के पूरे जीवन चक्र से जोड़ते हैं, जिसमें निर्माण, परिनियोजन, अपडेट, विफलता से उबरना और संचालन शामिल है। इसलिए पुस्तक Kubernetes को पारंपरिक मशीन केंद्रित प्रशासन के विकल्प के रूप में रखती है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि सफल उपयोग के लिए टीम को अपनी सेवाओं, कॉन्फ़िगरेशन और निर्भरताओं को घोषणात्मक संसाधनों के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। यही मानसिक बदलाव स्वचालन की विश्वसनीयता और दोहराव को संभव बनाता है। दूसरा, पॉड डिप्लॉयमेंट और सर्विस के माध्यम से अनुप्रयोग की मूल संरचना। पुस्तक Kubernetes के मुख्य ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग आदेशों की सूची की तरह नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी जिम्मेदारियों के रूप में पेश करती है। पॉड उस सबसे छोटी तैनाती इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक या अधिक निकटता से जुड़े कंटेनर समान नेटवर्क और जीवन चक्र साझा कर सकते हैं। लेकिन अकेला पॉड स्थायी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वह हट या विफल हो सकता है। डिप्लॉयमेंट प्रतिकृतियों की संख्या और संस्करण परिवर्तन का प्रबंधन करता है, जिससे एप्लीकेशन की इच्छित उपलब्धता एक नियंत्रित घोषणा बनती है। सर्विस अस्थिर पॉड पहचान के ऊपर स्थिर नेटवर्क पहुंच देती है, ताकि उपभोक्ता किसी क्षणिक कंटेनर पते पर निर्भर न रहे। इन तीनों को साथ समझना पुस्तक की व्यावहारिक शक्ति है। पाठक देखता है कि स्केलिंग केवल अधिक कंटेनर चलाना नहीं, बल्कि उनके लिए खोजयोग्य और स्थिर पहुंच बनाए रखना भी है। डिप्लॉयमेंट अपडेट के दौरान पुराने और नए संस्करणों के बीच संक्रमण को भी संरक्षित करता है। इस प्रकार पुस्तक का उदाहरण आधारित तरीका यह स्पष्ट करता है कि Kubernetes संसाधन अलग विशेषताएं नहीं, बल्कि एप्लीकेशन उपलब्धता के संयुक्त निर्माण खंड है। तीसरा, कॉन्फिग मैप्स और सीक्रेट से कोड, पर्यावरण और संवेदनशील डेटा को अलग रखना। कंटेनर इमेज को हर पर्यावरण के लिए बदलना संचालन को कठिन और त्रुटिपूर्ण बना सकता है। पुस्तक कॉन्फिग मैप्स और सीक्रेट्स के माध्यम से इस समस्या का व्यावहारिक समाधान समझाती है। कॉन्फिग मैप्स में गैर संवेदनशील सेटिंग्स जैसे फीचर विकल्प, सेवा पते या कॉन्फ़िगरेशन फाइल सामग्री रखी जा सकती है। इन्हें कंटेनर तक पर्यावरण चर या फाइल के रूप में पहुंचाया जा सकता है। इससे एक ही इमेज को विकास, परीक्षण और उत्पादन जैसे अलग संदर्भों में अलग सेटिंग्स के साथ उपयोग करना संभव होता है। सीक्रेट्स का उद्देश्य पासवर्ड, टोकन या अन्य संवेदनशील मानों को सामान्य कॉन्फ़िगरेशन से अलग प्रबंधित करना है। पुस्तक इन्हें सुरक्षा का स्वतः पूर्ण समाधान नहीं बताती, बल्कि Kubernetes संसाधन मॉडल के भीतर संवेदनशील डेटा संभालने की एक अलग इकाई के रूप में रखती है। इसका महत्वपूर्ण संचालनात्मक अर्थ है कि एप्लीकेशन कोड, रनटाइम कॉन्फ़िगरेशन और पहुंच नियंत्रण की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से अलग होती है। यह विभाजन बदलावों को अधिक नियंत्रित बनाता है और स्रोत नियंत्रण में अनजाने में गोपनीय मान डालने का जोखिम घटाने में सहायक है। पुस्तक के लिए यह विषय क्लाउड नेटिव अनुशासन का हिस्सा है, केवल सुविधा नहीं। चौथा, डेमन सेट्स और जॉब से लंबे समय तक चलने वाली सेवाओं के बाहर के कार्य संभालना। Kubernetes को केवल वेब सर्विस की प्रतिकृतियां चलाने वाला मंच समझना अधूरा है। पुस्तक डेमनसेट्स और जॉब्स जैसे विशेष ऑब्जेक्ट्स के जरिए दिखाती है कि अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग जीवन चक्र चाहिए। डेमनसेट का उपयोग तब उपयुक्त है जब क्लस्टर के हर या चुने हुए नोड पर एक पॉड चलना चाहिए। यह पैटर्न लॉगिंग, निगरानी या नोड स्तरीय सहायक सेवाओं जैसी जरूरतों से जुड़ता है। इसके विपरीत जॉब किसी सीमित कार्य को पूरा होने तक चलाने के लिए है। बैच प्रोसेसिंग, डेटा तैयारी या एक बार होने वाले संचालन में सफलता का अर्थ सेवा को अनिश्चित काल तक जीवित रखना नहीं बल्कि काम पूरा करना है। पुस्तक का योगदान इन ऑब्जेक्ट्स की सूची देने से आगे है क्योंकि यह पाठक को वर्कलोड के व्यवहार के अनुसार सही नियंत्रक चुनने का आधार देती है। यदि सीमित कार्य को डिप्लॉयमेंट की तरह चलाया जाए तो वह अनावश्यक रूप से पुनः आरंभ हो सकता है। यदि हर नोड की जरूरत को साधारण प्रतिकृतियों से हल किया जाए तो नोड कवरेज की गारंटी नहीं रहती। इस भेद को समझना कुबेरनेट्स डिजाइन में संसाधनों के सही चयन और कम संचालनात्मक जटिलता के लिए आवश्यक है। अंत में कुबेरनेट्स एपीआई का विस्तार और वास्तविक दुनिया के परिनियोजन पैटर्न। पुस्तक कुबेरनेट्स को एक बंद उत्पाद के बजाय विस्तार योग्य एपीआई मंच के रूप में भी प्रस्तुत करती है। मानक ऑब्जेक्ट्स बहुत सी सामान्य जरूरतें पूरी करते हैं पर कुछ संगठन अपने डोमेन की विशिष्ट अवस्था और संचालन नियमों को कुबेरनेट्स में शामिल करना चाहते हैं। कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन इस दिशा का माध्यम है जिससे नए प्रकार के संसाधन परिभाषित किए जा सकते हैं। संबंधित नियंत्रक या वेबहुक उन संसाधनों पर संगठन के नियम लागू कर सकते हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुबेरनेट्स के घोषणात्मक मॉडल को केवल कंटेनर तक सीमित नहीं रखता। फिर भी पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि विस्तार का उपयोग तभी करना चाहिए जब मानक ऑब्जेक्ट समस्या को पर्याप्त रूप से व्यक्त न कर सके। साथ ही इसमें वास्तविक अनुप्रयोगों, मशीन लर्निंग कार्यभारों और छोटे रास्पबेरी पाई क्लस्टर जैसे उदाहरणों का उल्लेख है। इन उदाहरणों का उद्देश्य किसी एक उत्पादन वास्तुकला को सार्वभौमिक बताना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि समान एपीआई सिद्धांत भिन्न वातावरणों में लागू हो सकते हैं। इस संतुलन से पाठक पहले मूल संसाधनों पर पकड़ बनाता है और फिर जटिल आवश्यकताओं के लिए मंच को जिम्मेदारी से विस्तारक करने की दिशा समझता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियरों, सिस्टम प्रशासकों और आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे उपयोगी है जो कंटेनरीकृत एप्लीकेशन को कुबेरनेट्स पर समझदारी से तैनात करना चाहते हैं। नए पाठकों को इससे वितरित प्रणालियों की बुनियादी भाषा और कुबेरनेट्स के प्रमुख ऑब्जेक्ट्स का स्पष्ट ढांचा मिलता है। अनुभवी पाठकों के लिए भी यह मूल सिद्धांतों, संसाधन चयन और एपीआई विस्तार के संदर्भ को व्यवस्थित रूप से दोहराने का साधन हो सकती है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक पॉड डिप्लॉयमेंट सर्विस कॉन्फिग मैप सीक्रेट जॉब और डेमनसेट को अलग अलग परिभाषाओं के रूप में नहीं बल्कि संचालन संबंधी समस्याओं के उत्तर के रूप में देखना सीखता है। इससे कॉन्फिगरेशन को घोषणात्मक रूप देने, उपलब्धता बनाए रखने और परिनियोजन को दोहराने योग्य बनाने की समझ विकसित होती है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका प्रमुख अंतर लेखकों का कुबेरनेट्स परियोजना और क्लाउड नेटिव संचालन से प्रत्यक्ष संबंध तथा आधारभूत अवधारणाओं को वास्तविक तैनाती उदाहरणों से जोड़ना है। यह अत्यधिक गहराई वाली उत्पादन संचालन पुस्तिका नहीं है, इसलिए सुरक्षा, नेटवर्किंग, अवलोकनीयता और जटिल प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के लिए अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक होगा। फिर भी आरंभिक से मध्यवर्ती स्तर तक यह कुबेरनेट्स को मशीनों के संग्रह के बजाय एप्लीकेशन की इच्छित अवस्था संचालित करने वाले मंच के रूप में समझाने वाली सुदृढ़ और केंद्रित मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रेंडन बर्न्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।